अनगार धर्मामृत लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणं प्रणम्य वीरं परमावबोधं आशाधरो विबोधनाय सोपन्य धर्मामृत धर्मशास्त्र पदानि किंचित् प्रगटीकरोति। पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह अनगार धर्मामृत नामक ग्रंथ है और अभी हम पृष्ठ संख्या 25 पर आए। 25 18 नंबर तक श्लोक हमने पढ़े थे, अब उससे आगे पढ़ेंगे। नीचे से दूसरी लाइन आगे विनय का फल बतलाते हैं। यहाँ तो वक्ता को यानी हम मुख्यतः आचार्यों की बात चल रही थी, उपदेश किसको देना चाहिए और किसको नहीं उसकी बात अपनी शुरू थी। यहाँ तो श्रोता भी चार प्रकार के बताए थे। देखो 23 पृष्ठ ये कहाँ पर आएगा, 25 पे ही पहली लाइन, 25 पे पढ़ेंगे। चार प्रकार के कौन से, अव्युत्पन्न यानी जिसको कुछ मालूमात नहीं धर्म की, अजान है धर्म से, संदिग्ध यानी है परंतु उसको वो तो डेफिनेट नहीं है, हाँ निर्णय नहीं है। एक है व्युत्पन्न यानी वो ऑलरेडी ज्ञानी है, और विपर्यस्य ने कितना भी उसको सुना वो तो उल्टा ही उसमें से ग्रहण करने वाला है, खोटी बुद्धि वाला है, तो उसको विपर्यस्य। ये चार प्रकार बताए है, उसमें से अव्युत्पन्न को तो कहते हैं उसको सुनाना, उसको तो लोभ दिखाकर भी उपदेश देना। कैसा लोभ, अरे सुनो तो सही आपकी तरक्की हो जाएगी, लौकिक में उसका इतना आपको फल मिलेगा, क्यों उस बहाने से वो सुनने के लिए तैयार होगा। और जब सुनेगा तो सही निर्णय कर सकेगा। दूसरा है संदिग्ध है ने जिसका भी निर्णय नहीं हुआ है, उसमें कोई संशय वगैरह बातें रही है तो कहते उस वो आकर पूछेगा विनय पूर्वक, क्योंकि उस विनय पूर्वक ये बात यहाँ लिखी हुई है। ये पहला पैराग्राफ है, फिर दोबारा पढ़ेंगे 25 नंबर का पहला पैराग्राफ। अभी हमने चार नाम पढ़े है ना, उससे आगे प्रवक्ता आचार्य यानी उपदेश देने वाले आचार्य, वक्ता और प्रवक्ता, प्रवक्ता नहीं वो विशेष वक्ता इसलिए प्रवक्ता कह दिया। धर्म के स्वरूप से अनजान अव्युत्पन्न श्रोता को, अव्युत्पन्न कौन है, जो धर्म के स्वरूप से अनजान है उसी को अव्युत्पन्न कहा। उसके अभिप्राय के अनुसार धर्म से मिलने वाले लाभ पूजा आदि का प्रलोभन देकर भी रखा है। उसके अभिप्राय के अनुसार वो क्या चाहता है कि धर्म करूंगा तो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये फिल्म मिलेगा, नहीं तो हाँ तुझे ये फल मिलेगा, तो सुन सही कृपा भाव से सदा सुखदायी, ये कभी सुखदायक है तो हमेशा ही सुखदायी ऐसे धर्म का उपदेश देते है। दूसरा श्रोता जो है धर्म के विषय में संदिग्ध श्रोता यानी उसका भी निर्णय नहीं हुआ है, फिर सुना है विनय पूर्वक समीप में आकर पूछता है, जिससे जिज्ञासा है और जो समझने के लिए आकर विनय से पूछता है कि यह ऐसे ही है या अन्य प्रकार से है, तो उसको समझाने की भावना से धर्म का उपदेश देते हैं। किंतु अभी तीसरा प्रकार जो धर्म का ज्ञाता व्युत्पन्न श्रोता है यानी ऑलरेडी उसको मालूम है वो ज्ञानी है, उसको तो कोई उपदेश देने का प्रयोजन नहीं है। या चौथे नंबर का विपरीत ज्ञान के कारण जिसकी मति विपरीत है, जो शास्त्रोक्त यानी शास्त्र में बताया हुआ धर्म का अन्यथा समर्थन करने के लिए कटिबद्ध है, वो तो बिल्कुल जो जो यहाँ बताया कि उसका उल्टा ही वो प्रूव करना चाहता है और वही सही है, उसका हट भी है। ऐसे विपर्यस्त श्रोता को, विपर्यस्त ने विपरीत बुद्धि वाले, धर्म का उपदेश नहीं देते हैं, क्योंकि दो प्रकार बताए ना, व्युत्पन्न श्रोता तो धर्म को जानता है और विपर्यस्त श्रोता तो धर्म से द्वेष रखता है। ये चार बातें हमने वहां देखी थी। अब उसके लिए दृष्टांत भी दिया था, प्रलोभन देखा था, जैसे बालक को कड़ु औषधि देनी है तो उसको कुपथ्य अपथ्य जो है मीठी चीजें देकर भी उसको औषधि पिलाते हैं, ऐसे ही इसको लौकिक कुछ लोभ दिखाकर कुछ लाभ होगा ऐसी बातें बताकर भी धर्म का उपदेश देते हैं। उसके आगे अभी हमारा विषय चलेगा, आगे विनय का फल बतलाते हैं। दूसरी बात बताई थी ना, संदिग्ध है परंतु वो विनय से आकर पूछते हैं, उसकी बातें हम बता रहे हैं। ये श्लोक का, हाँ श्लोक डायरेक्ट श्लोक यहाँ है, उसका अर्थ आगे है। वृद्धेश्वनुद्धताचारो नाम हिन्नानुबध्यते कुलशैलाननुक्रामन् सरिद्धि पूर्यतेर्णव अर्णव यानी समुद्र, सरित यानी नदियां, नदियों से सरिद्धि ही पूर्यते यानी सागर नदियों के द्वारा भरा जाता है, पूरता है। अभी हम उसका अर्थ पढ़ेंगे ना, ये कुलशैल यानी जो कुलाचल वगैरह पर्वत है उसको उल्लंघन नहीं करते समुद्र, फिर भी नदियों के द्वारा वो पूरे दिए जाते हैं, ये उन्होंने दृष्टांत दिया। अभी हम पढ़ेंगे, देखो तप श्रुत आदि में ज्येष्ठ यानी श्रेष्ठ ज्येष्ठ गुरुजनों के प्रति विनम्र व्यवहार करने वाला मनुष्य यानी विनय से पूछने वाला व्यवहार करने वाला मनुष्य नित्य ही लोकोत्तर महात्म्य से परिपूरक होता है। एक होता है लौकिक और एक होता है लोकोत्तर। ये मोक्ष मार्ग का उपदेश जो है उसका जो मार्ग है वो कैसा है, तो लोकोत्तर है, और बाकी जो हम जो कई सांसारिक जो प्रयोजन होते हैं वो लौकिक कहलाते हैं। तो कहते लोकोत्तर महात्म्य से परिपूरित होता है यानी पूर्ण हो जाता है, ठीक ही है। अभी ये दृष्टांत है, हिमवान, ये हिमवान नाम सुना है कभी? हाँ नलिन भाई, पर्वत कौन
सा?
छह पर्वत है जिसको कुलाचल कहते हैं, आपने सुना है कभी शंभु? जैसे जम्बू द्वीप तो आपने नाम सुना है, एक गोलाकार द्वीप पूरा है, उसके बाद लवण समुद्र, उसके आगे के जो द्वीप है वो इसे कंकण आकृति कहो, विस्तार है उसका, फिर भी बीच वाला पूरा ही गोलाकार है। अब उसके छह पर्वतों के द्वारा वो डिवाइडेड है, वो पर्वत कैसे पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए, जम्बू द्वीप काहे से घेरा हुआ है तो लवण समुद्र से, तो ये जो कुलाचल पर्वत पूरे आड़े फैले हैं, पूर्व की ओर भी समुद्र को टच करते हैं और पश्चिम की ओर भी करते हैं, ये छह, तो छह के द्वारा जम्बू द्वीप सात क्षेत्रों में विभाजित। सबसे नीचे दक्षिण की ओर हम देखिए भरत क्षेत्र है, फिर एक पर्वत है, फिर जघन भोग भूमि, फिर एक पर्वत, फिर मध्यम भोग भूमि, फिर एक पर्वत, फिर वो विदेह क्षेत्र जिसमें बीच में उत्तम भोग भूमि भी है, ऐसे ऊपर की साइड है, दूसरी साइड उत्तर दिशा की तरफ भी है। तो ये छह कुलाचल पर्वतों के द्वारा ये जो पूरा ही जम्बू द्वीप है उसके सात क्षेत्र बन जाते, उसको यहाँ कुलाचल कहा। देखो हिमवान आदि, उनके नाम मालूम है, हिमवान महाहिमवान वगैरह जो है, कुल पर्वतों का, कुल पर्वत है ना, ये कुलाचल अचल है ना पर्वत, उसको कुलाचल कहो या कुल पर्वत कहो एक ही बात है। उल्लंघन न करने वाला समुद्र, क्योंकि समुद्र तो वो द्वीप को घेरे हुए है, वो कभी अंदर वो पर्वतों को उल्लंघन नहीं करता है। गंगा आदि नदियों के द्वारा भरा जाता है, ये जो भरत क्षेत्र में बहने वाली गंगा है, ऐसे ऊपर जो अलग अलग नदी, क्या क्या नाम मालूम है, गंगा सिंधु सीता सितोदा, वो विदेह क्षेत्र की है ना, ऊपर ऐरावत की रक्ता रक्तोदा है, और बीच में वाली सुवर्णकुला रुप्यकुला वगैरह जो बीच वाली नदियां हैं, ऐसे हर, अभी हमने सात क्षेत्र देखे, ہر ایک کھیتر میں دو دو ندیاں ہیں, تو یہ 14 ندیاں ہیں مہا ندیاں, تو یہ پورو اور پشچم کو بہتی ہے اور سمندر میں جا کے ملتی ہے. یہی کہتے ہیں ہیموان آدی کل پروتوں کا اُلنگھن نہ کرنے والا سمندر گنگا آدی ندیوں کے دوارا بھرا جاتا ہے. آگے پڑھتے ہیں, ویتپن پروش یعنی جو آلریڈی گیانی ہے, اپدیش کا پاتر نہیں ہے, اس کا سمرتھن درشٹانت دوارا کرتے ہیں. پاتر نہیں وہ اپاتر ایسا نہیں, اس کے تو ابھی اپدیش کیوں ہوگا, ضرورت نہیں ہے اس کے. پہلے ہم اوپر 20 نمبر کا شلوک پڑھیں گے. یو ید وجاناتی سا تن شیشو یو وان ید دشتی سا تن لبھیا دو دیپے دھام ندھیم ہی دیپے کہ پورے دوانگ ندھیم پیو بھی پورے अंबुनिधिम पयोगी. जो पुरुष जिस वस्तु को अच्छी रीति से जानता है उसे उस वस्तु का शिक्षण देने की आवश्यकता नहीं, और जो पुरुष जिस वस्तु को नहीं चाहता उसे उस वस्तु को देना अनावश्यक है. दो बातें, ये दोनों को इकट्ठा लिया है, एक है व्युत्पन्न और एक है विपर्यस्त. तो कहते जो जिसको अच्छी रीति से जानता है उसको वो देना अनावश्यक है, आवश्यक ही नहीं है, और जो जिसको नहीं चाहता उसको देना भी आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है. कौन मनुष्य सूर्य को दीपकों के द्वारा प्रकाशित करता है, वो तो स्वयं प्रकाशित है, उसको दीपक से क्यों प्रकाशित करेंगे. और कौन मनुष्य समुद्र को जल से भरता है, वो ऑलरेडी भरा पड़ा है. अर्थात जैसे सूर्य को दीपक दिखाना और समुद्र को जल से भरना व्यर्थ है, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाशमान है और समुद्र में अथाह जल है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को उपदेश देना व्यर्थ है, क्योंकि वह तो स्वयं ज्ञानी है. आगे विपर्यस्त श्रोता को उपदेश देने में दोष बतला, 21 नंबर. यत्र मुष्णाति वा शुद्धिश्छायां पुष्णाति वा तम गुरुक्ति ज्योतिरुन्नीलत्कस्तत्रोन्नीलयेत् गिरम. गुरु की उक्ति, उक्ति यानी उनके वचन, उनकी बात, उनका कथन. गुरु की उक्ति रूपी ज्योति, उसको उपमा दी है. ये क्या है, ज्योति जैसे प्रकाशमान करती है, प्रकाश देती है, वैसे गुरु के वचन जो है वो धर्म का स्वरूप बताते हैं. तो गुरु की उक्ति रूपी ज्योति प्रकाशित होते ही जिसमें वर्तमान शुद्धि की छाया को हर लेती है और अंधकार को बढ़ाती है, उसे कौन उपदेश कर सकेगा. यानी ज्योति से तो प्रकाश फैलता है, तो यदि अंधकार ही फैलेगा तो क्या. ऐसे कहते हैं, यदि वो अंधकार को बढ़ाती है तो वैसे इसमें शुद्धि और कम हो जाती है, तो उसको विपरीत बुद्धि चलती है. विशेषार्थ गुरु के वचन दीपक के तुल्य है, दीपक के प्रकाशित होते ही यदि प्रकाश के स्थान पर अंधकार ही बढ़ता हो तो ऐसे स्थान पर कौन दीपक जलाना पसंद करेगा. उसी तरह गुरु के वचनों को सुनकर जिसके चित्त में वर्तमान थोड़ी सी भी शांति नष्ट हो जाती, वर्तमान यानी विद्यमान, वर्तमान यानी प्रेजेंट है, ऐसा नहीं लेना, वहां जो ऑलरेडी है, तो यदि थोड़ी सी भी शांति नष्ट हो जाती है. हमने देखा है ऐसे कोई उपदेश चलता है तो लोगों को चीड़ आती है. बाकी लौकिक आप बातें करो, खुद का पैसा लगा के भी वो विषय कषायों की बातें उन्हें रस लेंगे, आपको भी ले चलेंगे, है ना. होटल है, सिनेमा है, घूमना है, तो स्वयं अपने खर्चे से आपको भी ले चलेंगे. परंतु ये बातें निकली धर्म की, तो ऐसे वो यानी उनमें थोड़ी शांति है वो भी चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी. ये कहते थोड़ी सी भी शांति नष्ट हो जाती हो और उल्टा विपरीत अभिनिवेश ही पुष्ट होता। ऐसे कोई है ही नहीं सर्वज्ञ ऐसे कहेंगे, कोई सुनाने जाएगा तो वो तो आग बबूला हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को उपदेश देने से क्या लाभ है, उसे कोई भी बुद्धिमान प्रवक्ता उपदेश देना पसंद नहीं कर सकता। ये जबरदस्ती थोड़े किसी को उपदेश देना है, और जिसकी जो योग्यता है उसके तो सहज रूप से उपदेश मिलता भी है, और उसको देने का सामने वाले को भाव भी आएगा। हम देखते कभी ट्रेन से जा रहे, कहीं प्रवास कर रहे, कहीं पर कोई ऐसे मिल जाते हैं, किसी से अपनी कोई जान पहचान नहीं है, और ऐसे कोई विषय कहाँ से कैसे शुरू हो जाता है, और ये धर्म की गहरी चर्चा तक हम पहुंच जाते हैं, और वो सामने वाला भी बहुत उत्साह से रुचिपूर्वक सुनता है। ये ऐसा नहीं कि ये जैन है कि नहीं कितना जानता है, ये तो सोच समझ कर, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो भी ये तो जीव है, तो उपदेश को पात्र है, उसको ऐसा ही सहज रूप से उपदेश मिलता है। परंतु जैनी होकर भी कितने ही क्या करते, इससे नफरत रखते, तो उनको जबरदस्ती सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म के फल को सुनकर धर्म में प्रवृत्ति होती है, इस तरह धर्म का फल भी धर्म में प्रवृत्ति का एक अंग। क्या कहना चाहते हैं, पहले हमने देखा है किसी को लाभ बताते हैं, ये तेरे को लाभ होगा, तो ये धर्म में प्रवृत्ति करता है, यानी उसका जो फल मिलता है, मोक्ष तो आगे चलकर मिलेगा ही मिलेगा, उसके बीच में भी जो कुछ सांसारिक भी उसके कुछ अभ्युदय की प्राप्ति होती है हम कहेंगे उसको, उसके लिए नहीं करना है, वो तो बाद में समझेगा। परंतु कहते कि धर्म के फल को सुनकर वो धर्म में प्रवृत्ति होती है, तो ये जो धर्म का फल मिल रहा है वो भी एक उसका अंग है। इसलिए वक्ता और श्रोता का स्वरूप बतलाकर ग्रंथकार धर्म के फल का कथन करते हैं। 22 नंबर, सुखम दुख निवृत्तिश्च पुरुषार्था उभौ स्मृतौ धर्मस्तत्कारणं सम्यक् सर्वेषां विगानतः सर्वेषां अविगानतः। पूर्वाचार्यों ने सुख और दुख से निवृत्ति यानी सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति, ये दो पुरुषार्थ माने हैं, उनका कारण सच्चा धर्म है, इसमें किसी को भी विवाद नहीं है, यानी कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। विशेष यद्यपि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, नाम सुने होंगे ना आपने बहुत बार, यहाँ जो धर्म लिखा है वो तो शुभ भाव रूप धर्म है, अर्थ अर्थोपार्जन यानी पैसा कमाना, काम यानी जो भोग है विषयों के, और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ सभी ने स्वीकार किए हैं। जो पुरुषों की अभिलाषा का विषय होता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं, इन्होंने अलग तरह से उसकी परिभाषा बताई। पुरुष यानी आत्मा, हाँ। ये स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं समझना, जो पुरुषों की अभिलाषा का विषय होता है, अभिलाषा का विषय उसके लिए जो कुछ उद्यम भी करता है, तो उसको हम कहेंगे ये जो उद्यम है उसको पुरुषार्थ कहेंगे। सभी पुरुष ही नहीं प्राणी मात्र चाहते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो। अब यहाँ पुरुष और वो स्त्री इसका भेद करके, प्राणी मात्र क्या चाहते, तो सुख चाहते हैं, यानी हमारे सुबह से रात तक और रात में भी सोने के लिए भी जो हम प्रयत्न करते हैं सोते हैं, वो भी सभी सुख के। तो प्राणी मात्र चाहते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो और दुख से हमारा छुटकारा। उक्त चार पुरुषार्थों का भी मूल प्रयोजन सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति ही है। दोनों ओर से बताया, अकेले सुख की प्राप्ति भी नहीं और अकेले दुख से निवृत्ति भी नहीं, दोनों सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति। देखो ये धर्म भी जो शुभ भाव रूप धर्म भी क्यों चाहता है कि नहीं मुझे तो अच्छे संयोग मिले, अर्थ क्यों चाहता है पैसा, वो तो साधन है, उससे उसको चाहे वो जो इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है इसलिए उसको चाहता है, इसलिए اس کو کمانے کے لیے وہ پریتن کرتے ہیں. کام کیونکہ اچھاؤں کی پورتی کرنے کے لیے ہاں وشے وہ ہے, اور موکش کا پرشارتھ کرتا ہے, موکش کی پراپتی ہوتی ہے, وہ تو آنند سکھ میں دشا ہے جیو کی. تو کہتے سکھ کی پراپتی اور دکھ سے نیورتی ہے پرشارتھوں کا مول پریوجن, اتہ ان دونوں کو پرشارتھ کہا ہے. یدیپی دکھ سے نیورتی اور سکھ کی پراپتی ایک جیسی ہی لگتی ہے, کیونکہ دکھ تھا وہ مٹ گیا تو سکھ ہی ہے نا, وہ تو ایک جیسا لگتا ہے, کیونکہ دکھ نیورتی ہونے سے سکھ کی پراپتی ہوتی ہے اور سکھ کی پراپتی ہونے سے دکھ کی نیورتی ہوتی ہے. تتھاپی ویشیشک آدی درشن, کبھی نام سنا ہے ویشیشک ہے, نیایک ہے, سانکھیہ مت, ایسے یہ الگ الگ درشن ہے. جیسے جین درشن ایک مت ہے, ویسے انیا درشن ہوتے ہیں. ایک بدھ بودھک بدھ کا جو ہے کیا نام ہے اس کا, بدھ درشن ہی کہیں گے نا اس کو, بودھ دھرم بودھ درشن. ایک ویدک ہوتا ہے, ایک سانکھیہ متی ہوتا ہے, اسے الگ الگ بہت سارے ہیں مت. تو یہ ویشیشک نام کے جو ہے آدی درشن, انیہ بھی کتنے ہی کیا مانتے ہیں, مکت اوستھا میں دکھ نیورتی تو مانتے ہیں کنتو سکھانوبھوتی نہیں مانتے. وہ دکھ سے نیورتی ہوئی ہے پرنتو وہ انت سکھ ہے اس کو سویکار نہیں کرتا. اس لیے گرنتھکار نے دونوں کو گنایا ہے. ویشیشک درشن میں کہا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, ان کا مت کیا ہے, وہ ابھی یہاں بتا رہے ہیں. کیوں بتا رہے ہیں, ہمیں تھوڑا ہی سیکھنا ہے, نہیں وہ غلط ہے. اور ایسی سوچ رکھنے والوں کو اس سے ساودھان ہونا چاہیے. سامنے تو جینی ہے سننے والے, پرنتو یدی ان کا سانکھیہ مت جیسا ابھیپرائے ہو, ویشیشک جیسا ابھیپرائے ہو, تو وہ مت ان کا بدلنا چاہیے. اس لیے انیہ متوں کا, انیہ درشنوں کا بھی مت کیا ہے اور وہ غلط کیوں ہے, اس کی چرچا کرتے ہیں. اوپر ہم 23 نمبر کو نہیں, وہ 23 تو بعد میں. انہوں نے کیول وہ ٹیکا کا ہی انگ ہے. ویشیشک درشن میں کہا ہے, ویشیشک درشن میں کہا, نیچے کا پڑھوں گی میں, یہ تو ابھیودے نشریس سدھی سدھرما. نہیں یہ بات الگ ہے, ایک نمبر آگے چل کے دیا. اچھا ٹھیک ہے, مہاپران میں آچاریہ جنسین نے کہا ہے, یہ تو ابھیودے نشرے سات سدھی سنشچتا سدھرما, یعنی دھرم کس کو کہنا اس کی بات وہاں پر. اب یہاں ویشیشک درشن میں کیا کہا اس کو ہم پڑھیں گے. دیکھو بدھی سکھ دکھ اچھا دویش پریتن دھرم ادھرم اور سنسکار, ان نو آتم گنوں کا اتینت وناش ہو جانا موکش ہے. اس کو گن کہتے ہیں اور ان کا وناش ہونا اس کو موکش مانتے ہیں. ہمیں تو ہنسی آتی کہ بدھی کا وناش ہونا, سکھ کا وناش ہونا, دکھ کا وناش ہونا, وہ مکت ہے. اکت دونوں پرشارتھوں کا کارن دھرم ہے, یہ سبھی نے سویکار کیا ہے. ابھی دھرم کس کو کہتے ہیں, جس سے ابھیودے اور نشریس یعنی موکش کی پراپتی ہو اسے موکش کہتے ہیں. موکش کا یہ لکشن سبھی نے مانا ہے. یہ دھرم کا چاہیے نا, موکش کا تو نہیں. آگے پڑھیں گے, یہ 22 نمبر یہاں سماپت ہوتا ہے. یتہ یعنی کیونکہ دھرم کا پھل سکھ پراپتی اور دکھ نیورتی ہے, اتہ اس میں پروورتی کرنا یوگیہ ہے. یعنی یہاں کیا انہوں نے تاتپریہ نکالا, دھرم کا پھل کیا ہے, سکھ کی پراپتی اور دکھ سے نیورتی, جو سبھی جیو چاہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں دھرم میں پروورتی کرنا یوگیہ ہے. اس ارتھ کو ہی سپشٹ اکت ارتھ کو ہی یعنی اوپر بتایا ہوئے ارتھ کو ہی سپشٹ کرنے کے لیے मुख्य फल को देने में समर्थ धर्म के समस्त आनुषंगिक फल का अभिनंदन करते हैं। एक तो मुख्य फल और बाय प्रोडक्ट जो अन्य जो फल मिलते हैं उसके, जैसे किसान खेती करता है किसी फसल के चाहने के लिए, फसल तो उगती है और साइड बाय साइड और भी जो उसको कुछ फायदा होता है ना, घास भी उगता है और क्या क्या होता है, तो वो भी उसको कुछ उसमें से आमदनी उसके भी हो जाए, एडिशनल हो जाए, तो इसके कहते हैं आनुषंगिक फल। अन्य भी जो कुछ फल मिलते हैं, धर्म का फल क्या है, सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति, ये मुख्य फल है। अब आगे 23 नंबर पढ़ेंगे। ये न मुक्ति श्री पुंसी वास्य माने जगत श्रिय स्वयं रज्जन्तयम् धर्म केन वर्ण्यो न भावतः। मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस क्या प्राप्त होता है धर्म से, तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके लिए जिस धर्म को धारण करने वाले मनुष्य पर संसार की लक्ष्मियां स्वयं अनुरक्त होती है, संसार की लक्ष्मियों का अर्थ क्या है, हाँ संयोग जो है उसमें वैभव भी लेना है, लक्ष्मी जो हम संपत्ति को कहते हैं और अन्य भी जो कुछ अनुकूलताएं हैं, तो कहते हैं संसार की लक्ष्मियां स्वयं अनुरक्त होती है। उस धर्म के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकने में समर्थ है, यानी मोक्ष की तो प्राप्ति होती यही उसका फल है, कोई वो स्वर्ग के लिए धर्म को नहीं करना चाहता परंतु वो तो अपने आप मिल जाता है, हो ही जाता है। विशेषार्थ थ के ऊपर रफा देना, थ हुआ है शिष्यार्थ, शो मुझे दिख रहा है उसके अंदर है डंडी। धर्म पालन का मुख्य फल है संसार के दुखों से छूटकर उत्तम सुख स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति। आचार्य समंत भद्र ने अपने रत्नकरण श्रावकाचार के प्रारंभ में धर्म का कथन करने की प्रतिज्ञा करते हुए भी धर्म के इसी फल का कथन किया है। यथा देखो नीचे लिखा है, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान योधरत्युत्तमे सुखे। क्या कहते हैं देशयामि, यानी मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा, समीचीन धर्म कर्म धर्मम कर्म निवर्हणम, यानी कर्म का तो नाश करता है और संसार दुखता संसार से दुख से यो धरति उत्तमे सुखे, यानी संसार के दुखों का नाश करके सत्वान यानी प्राणियों को जो उत्तम सुख में धरता है ना, उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है। इसी का अर्थ ऊपर लिखा है, देखो मैं यानी आचार्य यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं, ये हमने देखा था प्रत्येक ग्रंथ के शुरुआत में लिखने वाले प्रतिज्ञा करते हैं, मैं ऐसा ऐसा इसमें स्वरूप बताऊंगा इस ग्रंथ में, तो कहते हैं मैं कौन कह रहे हैं मैं समंत भद्राचार्य, कर्म बंधन को नष्ट करने वाले समीचीन धर्म का कथन करता हूँ जो प्राणियों को संसार के दुख से छुड़ाकर उत्तम सुख में धरता है। ऐसे समीचीन यथार्थ धर्म का मैं स्वरूप यहाँ बताने वाला हूँ, ऐसे रत्नगण शावकाचार्य के शुरुआत में बताया। इस मुख्य फल के साथ धर्म का आनुषंगिक फल भी है और वह है सांसारिक सुखों की प्राप्ति। अभी अभी कहा था सांसारिक दुखों से मुक्त कराते हैं और यहाँ फिर बताते कि सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, जो यथार्थ में सुख है ही नहीं है, फिर भी जिसको लौकिक में जो अनुकूलताएं बताए हैं तो उनकी सहज रूप से प्राप्ति हो जाती है। हम क्या कहते हैं, हम तो धर्म करेंगे भाई, सब हमको मिलते हैं ना, किसी को थोड़ी धर्म की प्रेरणा देते हैं या उपदेश सुनाना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, अरे अभी तो हमारे कुछ प्रतिकूलताएं चल रही है, संयोग बुरे है, अभी बहू आने वाले ही घर में, फिर तो हम फ्री हो जाएंगे। तो कितना फ्री हो जाते हैं वो बहू आने के बाद पता चलता है, क्यों मैं टाइम निकालने वाले निकालते हैं, नहीं निकालने वाले नहीं निकाल पाते, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये तो धर्म की प्राप्ति होती है तो ये तो अनुकूलताएं सहज सामने आके खड़ी हो जाए, जो करना नहीं चाहता वो बहाने बनाता है। जिसको तो हमने देखा, देखो ये धर्म में प्रवृत्ति नहीं मोक्ष मार्ग है, उसको सीखने का जो परिणाम है ये तो शुभ भाव है, तो शुभ भाव चल रहा है और उसमें भी सच्चे धर्म की बात सुन रहा है, तो उसमें अशुभ जो कर्म है उसका जो अनुभव है फल देने की शक्ति वो सहज रूप से घटती है, उसमें जीव को कुछ नहीं करना पड़ता है, तो उसका फल कैसे मिलेगा? संयोगों में तो मिलेगा, तो संयोग सुधर जाएगी। यहाँ तो ज्ञानावरण का भी अनुभव घटेगा तो ज्ञान भी फैलेगा। हमारे कुछ समझ में नहीं आता, हम समझ ये तो पहले ही रोक लगा लेते कि हम कुछ नहीं समझेंगे। जो समझना चाहता है वो नहीं समझेगा, ऐसी बात नहीं हो सकती। हाँ, पहली बार सुनते तो ऐसे लगता है कि अरे ये बात अपने लिए नहीं है, हम ये बाकी तो सब जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, ऐसा लगता है। आपने वो तो नया घड़ा लाया होगा कभी बाजार से, तो उसके ऊपर पानी डालो, क्या होता है? सूखा का सूखा दिखता है। एक ड्रॉप डाला, दूसरा बूंद, तीसरी बूंद, चौथी बूंद, पांचवी बूंद, हमने तो 200 बूंदे डाली तभी वो सूखा का सूखा दिख रहा है। 201 नंबर की डाली तो पीला दिखा। आप कहेंगे 201 नंबर की पहले डालनी थी। उसको पहले कहते हैं। तो पहले बूंदों ने कुछ काम किया कि नहीं किया? हमारे घर में बालक जन्मता है, कौन सी भाषा सीख कर आता है पहले से, पहले जन्म की? क्यों भैया? हम जो भाषा बोलेंगे उसके साथ वो सीख जाता है। 6 महीने का 8 महीने का वो बच्चा तो बोलने की कोशिश भी करता है, साल डेढ़ साल में तो इतना बोलता है कि अपने को चुप बिठाता है। तो भाषा सीख लेता है, तो जो भाषा वो सुनता है, बार बार सुनाते भी है ना, वो कुछ नहीं समझता करके हम सुनाना बंद करते हैं। न्यूबॉर्न अभी हमारा बच्चा है, महीने का भी नहीं, उसके बारात लाते हो, उस किसको बुलाएंगे, क्या करेंगे, क्या क्या गाने उसके शादी के अभी से गाना शुरू करते हैं उसके, वो भी समझ लेता है सभी बातें। बार बार सुनता है तो वही चीजें वो सीख लेता है। ऐसे ही है धर्म की कुछ चीजें है, कोई पारिभाषिक शब्द है हमारे लिए नए है, पहली बार सुनते तो ऐसे अटपटा लगता है, परंतु बार बार सुनते हैं, कोशिश करते हैं तो उसका सही अर्थ भाषित हो जाता है। आपको सुनना है स्टोरी? सुननी? अच्छा आप सुनो, माइक नहीं दे दो, ये लो।
देखो ये सत्य घटना है कि जब देवलाली में पंच कल्याण हो रहा था, तब मेरी छोटी बेटी को हमने बुलाया था, उस समय वो पेट से थी और फिर वो आने के टाइम में वो बच्ची ज्यादा बड़ी हो गई, तो उसको हम रंगमा 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 रे गाना सुनाते थे। तो वो इतनी छोटी थी, मान लो 6 महीने के 8 महीने की, जो भी होगी साल की हो, तो भगवान उनके घर में ऐसे सामने ही उसमें रखे थे, तो हम पकड़ पकड़ के ले रहे ऐसा होते थे, पर जब ये गाना गाएं तो एकदम खुश होते थे। यानी ये बच्चों को सहज रूप से ख्याल में आ जाते हैं, जैसा हम करें माँ बाप करें वैसे बच्चे भी करते।
मुझे लगा वो दूसरी स्टोरी। पूना में आपने सुना होगा, हम 97 के आसपास हर 2-3 महीने में जाते थे, वहाँ शिविर लेते थे, 8-8 घंटे वहाँ पढ़ाते थे। तो वहाँ शिविर में एक महिला आई थी, यही कि बॉम्बे में जिसका कुछ नाम है सोसाइटी में, ऐसी एक महिला आई थी। तो यही विषय में सुना रही थी कि जो हम बातें बोलते हैं वो सामने वाला सीख जाता है, तो हमें उसमें प्रयोजन क्या है कि हमें स्वाध्याय करते रहना चाहिए, बातें समझ में आ जाए। इसके लिए मैंने एक दृष्टांत दिया। मैंने बोला कि हमें लड़का नहीं था इसलिए हमने सोचा चलो एक बच्चा हम गोद ले लेते हैं। तो हम गए अनाथालय में और बहुत सारे बच्चे देखे, एक बच्चा पसंद आया, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट दिख रहा था। एक उसमें प्रॉब्लम थी, क्या था? वो मद्रासी बच्चा था, साउथ इंडियन, तो हमें तो ये साउथ इंडियन लैंग्वेज आती नहीं कुछ, तो हमने सोचा कितना 3-4 महीने का बच्चा था, हमने सोचा अभी क्या करेंगे, तो पहले हम वो साउथ इंडियन लैंग्वेज वो सीख लेंगे। तो हम घर गए, 6-8 महीने तक हमने वो लैंग्वेज सीखी, फिर हमने वो उसको गोद लेने का सोचा। तो तब तो सब हंसने लगे वहां श्रोता, तो हमने वो बात वही छोड़ दी और फिर हम आगे बढ़े, जो क्योंकि हमको कहना था कि ऐसे ही, क्योंकि वहां तो उसको जो जिस बच्चे को हम लाएंगे घर में वो हमारी भाषा सीखता है, वो साउथ इंडियन पेरेंट का लड़का है इसलिए कुछ उसके तो ऐसा कोई सिक्का नहीं है कि वो वही भाषा बोलेगा, हमारे घर में आएगा वही भाषा बोलेगा। तो लोग समझ गए वो दृष्टांत। फिर हमारे सारे दिन भर का प्रोग्राम हो गया, रात को 9:30-10 बजे के बाद 10:30 बजे वो महिला आई हमारे रूम पर जहां हम ठहरे थे, आई और मैं ऐसी ऐसी हूँ, बम्बई की हूँ, इतनी वो सब बात बताई। तो वो बच्चे का क्या हुआ सीरियसली आके पूछा
हमने।
तो
बाय द टाइम हम गए आपको हेल्प चाहिए तो मैं करूंगी
तो लोग उसमें भी ऐसे उनको पुतल उसका क्या हुआ, उन्होंने वो तो हमने स्टोरी बनाई थी तो मूल उसका दृष्टांत तो पकड़ा नहीं देखो यहाँ भी आगे हम पढ़ेंगे इस मुख्य फल के साथ, कौन सा मुख्य फल है, मुक्ति की प्राप्ति, धर्म का आनुषंगिक फल भी है, उसका साइड बाय साइड अन्य भी उसके कुछ फायदे हैं, और वह है सांसारिक सुखों की प्राप्ति। जो मोक्ष के लिए धर्माचरण करता है, क्या किसके लिए, मोक्ष के लिए, सांसारिक सुखों के लिए धर्माचरण करता है ऐसा नहीं होता, वो तो पाप भाव होगा। जो मोक्ष के लिए धर्माचरण करता है उसे उत्तम देवपद, उत्तम देवपद क्यों कहा, देव तो ऑर्डिनरी भी होते हैं और उत्तम यानी इंद्रादिक भी होते हैं, राजपद आदि अनायास प्राप्त हो जाता है। अनायास का अर्थ होता है बिना कुछ मेहनत के, सहज रूप से होते हैं, विदाउट एफर्ट्स। इससे यह शंका होती है कि उत्तम देवपद आदि सांसारिक सुख तो पुण्यबंध से प्राप्त होता है और मोक्ष पुण्य बंध के भी अभाव में होता है, क्या कहा, वो पुण्य से होता है ना तो हम पुण्य करेंगे और मोक्ष तो पुण्य बंध के अभाव में होता है। तो एक ही धर्म रूप कारण से मोक्ष और बंध कैसे संभव हो सकता है, ये प्रश्न है, क्या कहा, मोक्ष की प्राप्ति भी उसी से और सांसारिक भी सुख उसी से, ये कैसे हो सकता है, एक तो बंध का अभाव का फल है और एक तो बंध का फल है। मोक्ष और बंध का एक कारण होने में विरोध क्यों नहीं है, इसका उत्तर देते हैं। 24 नंबर, निरुन्धति नवम पापम उपात्तम क्षपयत्यपि धर्मेनुरागाद्यत् कर्म सधर्मोभ्युदय प्रद। नवीन पाप बंध को रोकने वाले, क्योंकि ये मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कर रहा है तो सहज रूप से अनेक पाप प्रकृतियों का बंध ही रुक जाता है। हम देखते हैं ना ऊपर के गुणस्थानों में जाता है कितने प्रकृति बंध रुकना, उसको क्या कहेंगे, संवर हो जाता है। और पूर्वबद्ध पाप कर्म का क्षय करने वाले, पहले जो बंधा पड़ा है पूर्व भवों में उसका भी क्षय होता चला जाता है, उस क्षय करने वाले धर्म में अनुराग होने से जो पुण्य कर्म का बंध होता है, पुण्य कर्म का बंध आत्मा में स्थिरता से नहीं हो रहा है परंतु साथ साथ धर्म में अनुराग रूप जो शुभ भाव है उससे पुण्य कर्म का बंध होता है, क्योंकि अभी परिपूर्ण रीति से शुद्ध भाव में तो नहीं है, इस स्टेप बाय स्टेप पुण्य भाव होते रहेंगे, बारंबार आत्मस्थिरता होगी, शुद्ध भाव और शुभ भाव अभी चल रहे हैं साथ साथ, क्योंकि शुभ भाव का फल ये पुण्य बंधन। तो कहते हैं कि जो धर्म में अनुराग होने से जो पुण्य कर्म का बंध होता है वह भी धर्म क्या लिखा कहा जाता है। कहा जाना अलग है और रियल में होना अलग बात है।
धर्म का शब्द था
धर्म यानी सच्चा धर्म जो वीतराग धर्म, तो धर्म में अनुराग वीतरागी धर्म में अनुराग ये पुण्य रूपी धर्म है, उसको भी कहा जाता है ना व्यवहार से उसको भी धर्म कहते हैं। परंतु कौन सा धर्म जो सच्चे धर्म के साथ हो तो, परंतु वो तो लोग भूल गए ना। हाँ बस वो जो लौकिक में जो मिथ्या दृष्टि भी थोड़ा शुभभाव किया तो हमने धर्म किया ऐसा मान लेता, उसकी बात नहीं है। तो कहते वह भी धर्म कहा जाता है। पहले क्या लिखा धर्म में अनुराग होने से ये जो रियल सच्चा धर्म है मोक्ष का मार्ग है उसमें अनुराग होने से पुण्य कर्म का बंध हो रहा है, शुभ भाव रूप है ना वहां तो, वह भी धर्म कहा जाता है। और वह धर्म जो कहे जाने वाला धर्म है पुण्य जो है अभ्युदय को, अभ्युदय किसको कहा स्वर्ग आदि की संपदा को देता है, इसको अभ्युदय कहा। पहले भी बहुत बार ये शब्द आया था अभ्युदय और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभ्युदय ने सांसारिक जो कुछ जिसको हम कहते उन्नति को हो या उत्कर्ष, हाँ यहाँ लौकिक को लिया, स्वर्ग आदि की संपदा को देता है विशेषा। इसी को फिर दोबारा समझा उन्होंने, प्रश्नकर्ता का प्रश्न था कि धर्म से मोक्ष और लौकिक अभ्युदय, मोक्ष को भी अभ्युदय क्या, ये तो लोकोत्तर हुआ, ये लौकिक अभ्युदय दोनों कैसे संभव है, क्योंकि एक ही कार्य से ये दो अलग अलग, एक तो मुक्त है कर्म बंध से रहित होना और वो तो बंध का फल है, मोक्ष कर्म बंध के नाश से मिलता है और लौकिक अभ्युदय पुण्य बंध से मिलते हैं। इसके उत्तर में ग्रंथकार कहते हैं नवीन पाप बंध को रोकने वाले और पुराने बंधे हुए पाप कर्म का एक देश से नाश करने वाले, एक देश ने पार्शल कुछ अंश में, ऐसे धर्म में विशेष प्रीति करने से, धर्म के प्रति अनुराग है ना ये शुभ भाव है, और पैसे के प्रति अनुराग है स्त्री पुत्र के प्रति अनुराग है वो तो अशुभ राग, राग ही है परंतु अशुभ राग है, और जो द्वेष रूप बुद्धि वो तो द्वेष ही है। तो यहाँ धर्म में विशेष प्रीति करने से जो सातावेदनीय, देखो पुण्य बंध के अभी कुछ पुण्य प्रकृतियों के नाम गिना रहे, हमें आठ कर्म मालूम है, आप बताएंगे नितिन भाई आठ कर्मों के नाम, मूल प्रकृतियों के नाम बताने आपको, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अंतराय, ये चार क्या है घाती कर्म और अघाती, देखो वेदनीय आयु नाम और गोत्र, ये घाती अघाती का भेद हुआ। घाती कर्म कितने पुण्य रूप है सभी पाप रूप है, और अघाती में चारों में दो दो डिवीजन, वेदनीय में साता वेदनीय असाता वेदनीय, आयु में शुभ आयु अशुभ आयु, नाम में शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म, गोत्र में उच्च और नीच गोत्र। अब एक रूल ऐसा है कि हर समय आयु तो कभी कभी बनती भाई, मतलब हर समय सात कर्म बंध ही रहे, हर समय बनते तो हर समय बन रहे। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय क्या है पुण्य भाव है ना, तो पुण्य कर्म का बंध होना चाहिए। तो अभी ज्ञानावरण दर्शन और मोहनी अंतराय बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो पाप है कि पुण्य, पाप है तो फायदा क्या पाप बन रहा है तो कम नहीं, वो जो है ना वो पुण्य कहाँ बन रहा है, पुण्य बन रहा है वेदनीय में आयु में बन रही होगी तो नाम में और गोत्र में, और जिसका फल किसमें मिलता है मोस्टली तो पुद्गल में मिलता है संयोगों में मिलता है, यानी पुण्य परिणाम करे हम, स्वाध्याय किया उपवास किया दान दिया यात्रा में गया सब हमने पुण्य किया, और फल किसको मिला पुद्गल को मिला भाई। व्यापार धंधे में तो हम बहुत एक्सपर्ट है, हम धंधा करते और भाई के खाते में जमा करते क्या अपने, अरे तो यहाँ तो कहते हैं पुरानी इंग्लिश सातावेदनी, यहाँ से विशेष प्रीति करने से यानी शुभ भाव हो रहा है। देखो ये ज्ञानावरणादि बंधेंगे परंतु वो हीन अनुभव वाले बंधेंगे, बंधेंगे जरूर। और जो मिथ्या दृष्टि है ना, कितना भी पुण्य क्यों न करे, मिथ्या तो अनंत अनुबंधित तो बंधेगा ही बंधेगा। जब तक वो पड़ा है तब उसका कितना भी शुभ भाव क्यों न हो, वो मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। उसको संसार से छूटने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा उसको। हेलो, आवाज आ रही? हेलो 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 हाँ हाँ ठीक है हाँ। यहाँ कह रहे थे ये जो शुभ भाव है ना उसके साथ साथ वाला, सच्चे धर्म में प्रीति है ये जो उसका शुभ भाव है, उससे क्या बन रहा है? सातावेदनीय। हमने देखे ना आघाती कर्म में शुभ प्रकृतियां बन रही है, शुभ आयु उस समय आयु बंधेगी तो शुभ आयु, शुभ नाम कर्म, नाम कर्म की जो अनेक प्रकृतियां हैं शुभ नाम कर्म बंधेगा, और शुभ गोत्र ने उच्च गोत्र रूप पुण्य कर्म का बंध होता है, बंध होता है। अभी अबंध दशा प्राप्त नहीं हुई है, ऊपर के गुणस्थान में मुनियों को भी बंध होगा कि नहीं होगा, मुक्त तो नहीं हुए हैं। उस गुणस्थान में जितनी बंध योग्य प्रकृतियां वहां बंधेगी जरूर, उसे भी उपचार से धर्म कहा है। कौन सा? ये जो सच्चे धर्म में अनुराग है और उसके फल रूप जो पुण्य प्रकृतियां भी बनती है, यानी ये शुभ भाव से बंध रही है, उस शुभ भाव को भी उपचार से धर्म कहने में आता है। और उस धर्म से स्वर्गादि रूप लौकिक अभ्युदय की प्राप्ति होती है। ये सुनकर या पुण्य का ऐसा फल मिलता है, उस लोभ में जीव कुछ शुभ भाव करना चाहते हैं परंतु मिथ्यात्व को ऐसा ही शब्द रखते हैं। एक अनुभव मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि ऐसे परिणाम तो सतत नहीं रहते हैं। कौन से कि चारों गति बांधता रहता है मिथ्या दृष्टि जी, पूरे दिन में कभी कौन सी गति कभी कौन सी गति, क्योंकि परिणाम तो एक जैसे रहते नहीं है, तो कैसे आयु बन के कहाँ चला जाएगा? भले कि कोई कोई पुण्य के कार्य किए होंगे, थोड़े करता है ना, पाप की तो लिस्ट बहुत बड़ी है, वो लिस्ट गिना नहीं सकता, इसलिए पुण्य की लिस्ट याद रखता है कि मैंने ये किया ये किया ये किया। पाप को गिनाते रहे तो कितना पूरा का पूरा भर जाएगा, इसलिए तो उसको कभी गिनाता नहीं है। और वो चाहता मैंने इतना धर्म किया और फिर मुझे ऐसा क्यों संयोग किया। तो देखो ये जो सातावेदनीय शुभायु शुभ नाम शुभ गोत्र रूप पुण्य कर्म का बंध होता है, उसे भी उपचार से धर्म कहा है, और उस धर्म से स्वर्गादि रूप लौकिक अभ्युदय की प्राप्ति होती है। यथार्थ में तो यथार्थ करते इन रियालिटी तो वस्तुतः देखेंगे तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में एक साथ प्रवृत्त एकाग्रता रूप शुद्ध आत्म परिणाम का नाम धर्म। क्या कहा? धर्म की परिभाषा उन्होंने बता दिया। क्या बताई? यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही धर्म है। तो उसमें एक साथ प्रवृत्ति, क्योंकि तीनों एक साथ ही उत्पन्न होती है, यानी अपने आत्मा का जो शुद्ध परिणाम है, जो आत्मा आत्मा में ही एकाग्र हुआ है, एकाग्र होने के लिए पहले उसका स्वरूप जानना चाहिए, स्वपर भेद विज्ञान करना चाहिए, अपने आत्मा में अभेद रूप से स्थित होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, तब ये समय दर्शन ज्ञान चारित्र एक साथ प्रकट होता है। तो कहते वही धर्म है। आचार्य कुमकुंद ने प्रवचन सार के प्रारंभ में धर्म का स्वरूप बतलाते हुए कहा है, ये सात नंबर की गाथा में उन्होंने बता दिया, लिखा है लिखा नीचे, देखो नीचे की गाथा पढ़ेंगे। चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोक्ति निदिष्टो मोहखो हविहीनो परिणामो अपनो समूह। चारित्तम खलु धम्मो, यानी खरेखर चारित्र ही धर्म है। तो पूछेंगे वो क्या है? तो कहते जो धर्म है यानी जो चारित्र है वो क्या है? तो समोत्ति निदुप है, यानी उसे ही समभाव कहा है। किसने कहा है? निर्दिष्ट सर्वज्ञ भगवान। यानी चारित्र ही धर्म है और धर्म क्या है? तो समभाव है। और वो क्या है? समभाव क्या है? तो मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम सम है या समभाव है, यानी वही चारित्र है, वही धर्म है। अब यहाँ आते हैं 29 पृष्ठ पर। इन्हीं आचार्य कुलकुंद ने अपने भाव पाहुड़ में, ये भाव पाहुड़ पढ़ा है कि आपने? हाँ माधवी, नाम सुना है? नाम सुना किस में है? कोई ग्रंथ का नाम मालूम? अष्ट पाहुड़। अष्ट पाहुड़ में एक भाव पाहुड़ है। अन्य पाहुड़ों के नाम याद है? कोई भी एक दो चार। हाँ, दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, लिंग पाहुड़, शीर पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, भाव पाहुड़, बोध पाहुड़। तो कहते अपने भाव पाहुड़ में धर्म और पुण्य का भेद करते हुए कहा है, नीचे नीचे फुटनोट में, पूयादि सुवय सहियम पुण्यम हि जिने हि शासने गुणियम मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो धम्मो। यही बात बताई ना वहां पर? या धम्मो लिखा अपनो धम्मो, वहां अपनो ही समो कहा था। देखो क्या लिखा है, उसका अर्थ देखेंगे हम। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा अपने धर्मोपदेश में कहा गया है कि जिन्हें ही शासने भणियम, जिन शासन में कहा है ना, जिनेन्द्र भगवान ने बताया है कि देव पूजा आदि के साथ व्रताचरण करना पुण्य है। यानी देव पूजा आदि में क्या क्या लेना? देव पूजा है, दया है, दान है, व्रत, शील, संयम, जो कुछ है। तो कहते ये तो पुण्य है। और मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को धर्म कहते हैं। यानी निश्चल ऐसा जो आत्मा का परिणाम, देखो चंचलता दो प्रकार की होती है, एक प्रदेशों की चंचलता उसको योग कहते हैं, और एक परिणामों की चंचलता जिसको हम कषाय कहेंगे। तो कहते मोह और क्षोभ से रहित आत्मा, यहाँ क्षोभ यानी कषाय की अपेक्षा है, मोह यानी चारित्र मिथ्यात्व की अपेक्षा बताइए, वो धर्म है। ऐसे धर्म में अनुराग करने से उसमें रुचि है, अनुराग है, जो पुण्य बंध होता है उसे भी उपचार से धर्म कहते हैं। यानी धर्म इटसेल्फ शुद्ध भाव है, और ऐसे धर्म में जो प्रीति है, अनुराग है, वो शुभ भाव है, और उससे उसे भी उपचार से धर्म कहते हैं। ये उपचार कब होगा? निश्चय होगा तब। बिना निश्चय के उपचार भी संभव नहीं है। शास्त्रों में कहा है प्रयोजन और निमित्त में उपचार की प्रवृत्ति होती है। प्रयोजन यानी कारण, जैसे हम कारण में कार्य का उपचार करते हैं, है ना, तो प्रयोजन में भी उपचार की प्रवृत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा ये जो पुण्य कर्म का बंध होता है, कौन से सात आवेदन, शुभ आयु, शुभ नाम वगैरह, पुण्य कर्म का बंध होता है, कौन से भावों से होता है? शुभ। तो इसलिए शुभ भाव को पुण्य कहते हैं। पुण्य तो कर्मों का नाम है, पुण्य प्रकृतियों का नाम पुण्य है, और यहाँ जीव के भावों को पुण्य कह रहे हैं। वो कार्य उसका कारण है, शुभ भाव पुण्य प्रकृति के बंध का कारण है, उस कारण में कार्य का उपचार किया। ऐसे अन्य अन्य जगह अलग अलग बात हो सकती है। तो कहते निमित्त में भी उपचार की प्रवृत्ति होती है, सहचर में भी उपचार की प्रवृत्ति होती है। यानी जो निश्चय धर्म के साथ साथ जो शुभ भाव है वहां पर भी उपचार की प्रवृत्ति होती है, उसमें भी उपचार किया जाता है। पुण्य को उपचार से धर्म कहने का प्रयोजन यह है कि लोक में और शास्त्र में पुण्य के लिए धर्म शब्द का व्यवहार किया जाता है। लौकिक में भी ये धर्म कहा जाता है, परंतु भोले लोग इसी को धर्म मानने लगे। सच्चे धर्म तो पता ही नहीं है क्या है, और कभी सोचते भी नहीं है कि हमारा घर बहुत धार्मिक है। क्या करता है, रोज सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, हाँ पूजा करते हैं, कभी कभार यात्रा में जाते हैं, दानशील है, हम बहुत सारा दान देते हैं, हाँ शास्त्र छपवाते हैं, बहुत सारी उपवास भी करते हैं। अच्छा अच्छा, वो रह गया था। तो हम बहुत धार्मिक है, हाँ बचपन में हम भी ऐसे ही सोचते थे, यही धर्म हो ना और क्या धर्म होता है। परंतु ये सच्चा तत्व ज्ञान क्या है, धर्म किसे कहना, वो धर्म कहाँ होता है, कैसे प्रकट होता है, जब तक इसकी कोई मालूमात नहीं है तो उसके लिए जीव प्रयत्न क्यों करे। लोक में शब्द कोशों में पुण्य को धर्म शब्द से कहा है, डिक्शनरी शब्द कोश डिक्शनरी में भी यही बात है। शास्त्रों में भी पुण्य को धर्म शब्द से कहा है। पहले लिखाए है कि आचार्य जिनसेन ने जिससे सांसारिक अभ्युदय की प्राप्ति होती है उसे भी धर्म कहा है। ये सांसारिक अभ्युदय को यहाँ हमेशा लिया, सांसारिक सुख की जिससे प्राप्ति होती है उसको धर्म कहा। वो धर्म क्या है, पुण्य बंधन है, पुण्य है। तथा उनके शिष्य आचार्य गुणवग्र ने कहा है, कल पढ़ेंगे ना, हाँ ये तीन लाइन पढ़ लेते हैं। जैसे किसान बीज से धान्य प्राप्त करके उसे भोगता भी है और भविष्य के लिए कुछ बीज सुरक्षित भी रखता है, उसी प्रकार धर्म से सुख संपत्ति को पाकर धर्म का पालन करते हुए भोगों का अनुभवन कर, क्या कहना चाहते हैं, किसान क्या करते हैं, बीज से धान्य की प्राप्ति होती है, फसल उगती है तो पूरी खा लेता है ना, थोड़े बोने के लिए, और फिर वापस दूसरे फसल के लिए वो रखेगा, भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखता है। वैसे ही धर्म से सुख संपत्ति को पाया, यानी वो धर्म शुरुआत किया तो साथ में पुण्य भाव हुआ तो स्वर्ग में गया, या वहां से आया राजा हुआ, तो कहते धर्म का पालन करते हुए भोगों का अनुभव। तो धर्म क्या करने की आवश्यकता है, तो कहते धर्म नहीं करेगा तो आगे तो भ्रष्ट हो जाएगा और संसार में घूमेगा फिर। तो कहते धर्म का पालन करते हुए भोगों का अनुभव। अब यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमन सदा देतो।